क्या समझती हैं फैज? फैज क्या है? किसी जात से रूहानी तौर पर फायदा उठाने को फैज कहते हैं। फैज कैसे हासिल किया जाता है? फैज हासिल करने के लिए फैज लेने वाले से मोहब्बत, उसका अदब, उसकी अजमत का दिल में होना ज़रूरी है। किसी ने दुआ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फैज के ख़जाने अता फरमा दीजिए। कि किसी की ज़ात से कुछ लेने के लिए अव्वल बात तो ये ज़हन नशीन होनी चाहिए कि दिल में कोई लालच ना हो। अगर लालच है तो फिर फैज नहीं मिलेगा। एक आदमी ने अपने पीर मुर्शिद से कहा, एक मुरीद ने, हजूर मुझे इसमें आज़म सिखा दीजिए, मुझे इसका बड़ा शौक़ है। मुर्शिद ने जवाब दिया, नहीं तुम्हें भी इतना ज़ब्त नहीं है। उसने इल्तिजा की, हजूर मुझे बहुत शौक़ है, आप मेहरबानी फरमाएं। मुर्शिद ने कहा, अच्छा। अगले दिन मुर्शिद ने उस शख्स को बुलाया, मुरीद को, और एक डिबिया उसके हवाले की। इस पर एक कपड़ा अच्छी तरह चढ़ा हुआ था। मुर्शिद ने कहा, ये डिबिया फलां जगह रख कर आनी है, बस ये वहाँ रख कर आ जाओ, लेकिन तुमने इसके अंदर नहीं देखना कि इसमें है क्या। अगर देख लोगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। उसने डिबिया उठाई, उसका वज़न बहुत ही हल्का था। उसको रास्ते में जस्तजू हुई कि इतना कपड़ा डिबिया पर लपेटा गया है, वज़न इसका कुछ भी नहीं है, इसमें है क्या। थोड़ा सा सफ़र तय किया तो रह न सका। उसने डिबिया के मुँह से कपड़ा खोला, खोलता चला गया, खोलता अंदर देखा तो इसमें एक मुर्दा चूहिया थी। उसने इसी तरह कपड़ा बांधा और जाए मुकर्रर पर जाके रख दिया। वापस आए तो फिर मुर्शिद ने कहा, बरखुदार इमानत जगह पर रखा है? आज क्या जी रखा है। फरमाया, इसको देखा तो नहीं? कहने लगा, इसमें देखने की चीज़ ही क्या थी, एक मुर्दा चूहिया ही तो थी। फिर मुर्शिद ने कहा, इतनी सी बात, इतना सा राज तू जब्त ना कर सका तो इसमें आदम को कैसे जब्त करेगा। ठीक है, अब अगर कोई लालची है तो फैज लेकर कैसे फैज लेगा। फैज अगर लेना है तो इसका मसरफ भी कोई होगा, वरना फैज लेने का फ़ायदा क्या। फैज ये है कि अपने दिल से हर किस्म का लालच निकाल दे। अगर लालच निकल जाएगा तो फैज अज़े खुद ही आ जाएगा। नहीं, बहुत लंबी वाक्य में सुना, छोटी छोटी सी चीज़ बताऊँगी। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े वली गुजरे हैं, ठीक है, कि उन्हें आवाज़ आई, फलां जगह यहूदियों का मेला है, यहूदियों का, आप भी उन जैसा लिबास और हुलिया बनाकर वहाँ पहुँच जाएं। आपने हुक्म के मुताबिक हुलिया बनाया और जैसा लिबास, उन्हीं जैसा लिबास पहन लिया, यहूदियों जैसा, और पहुँच गए। यहूदियों का जो बड़ा राहिब था, या वो ईसाइयों का जो बड़ा पादरी था, वो आया। तकरीर शुरू की, लेकिन इससे बात ना हो सकी, खामोश हो गया। लोगों ने कहा, हजूर क्या आप बीमार हैं, कोई तकलीफ महसूस हो रही है? उन्होंने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा, हजूर बात क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा इलम सलब कर लिया गया। पूछा, आपका इलम कैसे ख़त्म हो गया? जवाब दिया, इस मजलिस में कोई मोहम्मदी बैठा हुआ है, हैं, नबी करीम सल्लम का मोहम्मदी, इसके नूर से मेरा इलम सलब हो गया। लोगों ने कहा, इसको ढूंढो, इससे निमटते हैं। उसने कहा, सब एक ही जैसे हैं, अब लिबास भी सबका एक जैसा है, किसको मोहम्मदी समझूं? लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं اس کے نور سے بجھ گیا ہوں۔ پھر اس نے کہا اے محمدی، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے تیرے نبی کے نام کی قسم ہے، تو کھڑا ہو جا۔ بایدی بستامی کھڑے ہو گئے، لوگ آپ کو دیکھتے ہی تیش میں آ گئے، آپ کی طرف بڑھے۔ لیکن پادری نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا نور ہے تو اس کے پاس علم بھی ہوگا، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس کون سا علم ہے۔ پادری نے حضرت بایزید بستامی سے بہت مشکل مشکل سوالات پوچھے۔ آپ کا سوال دیکھ رہی تھی کل منڈی والا، لیکن وہ اس میں نہیں ملا۔ نمبر ایک، وہ کون ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں؟ آپ نے کہا وہ اللہ واحد قہار ہے۔ وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں، وہ رات اور دن ہے۔ وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں، آپ نے فرمایا وہ عرش کرسی اور قلم ہے۔ وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں، آپ نے فرمایا وہ توریت زبور انجیل اور قرآن پاک ہے۔ وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں، آپ نے فرمایا وہ پانچ فرض نمازیں ہیں۔ وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ آپ یہ سوال کر رہے ہیں پادری، جواب دے رہے ہیں بایزید بستامی، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چھ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ وہ سات بتاؤ جن کا آٹھواں نہیں، آپ نے فرمایا سات آسمان ہیں، ساتھ ساتھ وہ سورتوں کے نام بھی ریفرنس بھی ہیں۔ وہ آٹھ بتاؤ جن کا نواں نہیں، آپ نے فرمایا وہ عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں۔ وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہیں، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے نو فسادی شخص تھے، سورہ نمل میں ان کا ذکر آیا۔ وہ دس بتاؤ جن کا گیارہواں نہیں، آپ نے فرمایا وہ حج تمتع کرنے والے پر دس فرض روزے ہیں، جن کو قربانی کی طاقت نہ ہو یہ روزے رکھتے ہیں۔ وہ گیارہواں بتاؤ جن کا بارہواں نہیں، آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ بارہ بتاؤ جن کا تیرواں نہیں، آپ نے فرمایا مہینوں کی گنتی ہے۔ وہ تیرواں بتاؤ جن کا چودواں نہیں، آپ نے فرمایا حضرت یوسف کا خواب ہے۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہے لیکن جنت میں جائے گی۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی تھی۔ جھوٹ بولے تھے نا انہوں نے دونوں، اپنے باپ سے جا کے دونوں مرتبہ۔ اچھا، وہ قوم بتاؤ جو سچی اور دوزخ میں جائے گی، سچی ہے اور دوزخ میں جائے گی۔ آپ نے فرمایا وہ یہود و نصارہ کی قوم۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ تمہارے نام کی قرار گاہ ہے۔ کتنا مشکل سوال ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ تمہارے نام کی قرار گاہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے کان میرے نام کی قرار گاہ ہے۔ الزاریات ذرون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ چار ہوائیں ہیں، مشرقی مغربی شمالی اور جنوبی۔ الحملات وقرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بادل ہے۔ اجاریات یسرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ المقسمات امرا کیا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جو پندرہ شعبان سے دوسرے پندرہ شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ وہ بتاؤ جو بے جان ہے، بے جان اور سانس لے۔ وہ بتاؤ جو بے جان ہے اور سانس لے، کیا ہے وہ؟ آپ نے فرمایا وہ صبح ہے۔ وہ چودہ بتاؤ جنہوں نے رب العالمین سے گفتگو کی، آپ نے فرمایا سات آسمان اور سات زمینیں ہیں۔ وہ قبر بتاؤ جو مقہور کو لے کر چلی، آپ نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ وہ پانی بتاؤ جو نہ آسمان سے نازل ہوا نہ سمندر سے نکلا، آپ نے فرمایا وہ پانی گھوڑے کا پسینہ تھا جو ملکہ بلقیس نے آزمائش کے طور پر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ وہ چار جاندار جو نہ باپ کی پشت سے نہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا بہت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ذبح ہونے والا دمبا نمبر ایک، ہر سالے کی اونٹنی نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت हवाएं, ठीक है। वो पहला खून जो ज़मीन पर बहाया गया आपने नाहक आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का था, जिसको उनके भाई काबिल ने कत्ल किया। वो क्या चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा की और ख़ुद ही उसको ख़रीद लिया? वो क्या चीज़ है जो अल्लाह ने पैदा की और ख़ुद ही उसको ख़रीद भी लिया? आपने फरमाया वो मोमिन की जान है। कितनी ज़बरदस्त इंसान है मोमिन है कि अल्लाह ने खुद ही पैदा कर लिया और ख़ुद ही उसकी जान को ख़रीद लिया। क्या बात है मोमिन की, पर मोमिन भी मोमिन हो। वो आवाज़ बताओ जो गधे ने पैदा की फिर उसे नापसंद फरमाया, वो आवाज़ जो वो आवाज़ बताओ जो अल्लाह ने पैदा की लेकिन फिर उसे नापसंद फरमाया, वो गधे की आवाज़ है। वो चीज़ बताओ जो रब ने पैदा की और फिर उसे बुरा कहा, आपने फरमाया वो औरतों का मकर है, औरतों की फरेब, औरतों की मकर बहुत ज़बरदस्त। बड़े बड़े फसाद जो हैं दुनिया में जो होते हैं, आदमी बरी जमा होते हैं उससे, औरतें फसादी होती हैं, औरतें फसाद फैलाती हैं, लेकिन बड़ी जवाबदेही है उनकी औरतों की। ज़्यादातर औरतें कब्र खुद में जाएंगी जानने में, और फसादी खास तौर से दरगुजर करने की तो आदत औरत में है ही नहीं। एक इतनी सी बात है तो उसको इतना बना के मिले, कोई इतनी सी किसी ने गलती की है तो उसको इतनी बताएंगे, ठीक है। इंसान दरगुजर करे, दरगुजर, वरना बड़ी पूछ है, बहुत पूछ। वो कौन सी औरतें हैं जो सबसे अफजल हैं? आपने फरमाया हज़रत हव्वा, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत आसिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं? कौन से दरिया? आपने फरमाया वो सहून, जैजून, दजला, फरात और नील है। आप इसमें कौन सा पार्ट सबसे अफजल है, वो कोतूर है, कौन सा जानवर अफजल है, घोड़ा है, महीना कौन सा अफजल है, रमज़ान है, रात कौन सी अफजल है, लैलतुल कदर है, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इल्म आपने जवाब पूछा। अब इसमें देख रही थी मैं वो नाम के वो बैल क्या कहते हैं, बैल जब बोलता है तो क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं कल आपको बता रही थी पांच जानवर जो है सलमान अलैहिस्सलाम को पहले, पांच जानवर जो है सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनकी दुआ और इनकी बददुआ से बचो, इनकी दुआ लो और इनकी बददुआ से बचो। और वो कहा क्यों था कि एक बस्ती में एक आदमी ने बहुत सारे कुत्तों को इकट्ठा किया और सबको जहर दे दिया। सलमान अलैहिस्सलाम को पता चला और वो गए, और जब उस आदमी के पास पहुँचे तो उस आदमी ने कहा कि हजरत मुझे बुला लेते, आपने क्यों तकलीफ की मेरे पास आने को, बादशाह थे सलमान अलैहिस्सलाम सुलेमान। उन्होंने कहा नहीं, अपनी बस्ती के लोगों को बुलाओ, एक ख़ास बात बताने के लिए आ जाए। जब बस्ती के लोग इकट्ठे हुए मुख्तसर बता रहे तो उन्होंने कहा कि यार कान खोल कर सुन लो, पांच जानवर ऐसे हैं जिनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है और जिनकी बददुआ भी बहुत जल्दी, ठीक है। इसमें से पहला जानवर कबूतर है, ठीक है। और जब कबूतर सुबह उठता है हम कहते हैं ना वोटर वो करता है, नहीं, वो सुबह उठ के सबसे पहले अल्लाह 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 करता है, ये उन्होंने बताया है सलमान। दूसरा बिल्ली है, तीसरी चींटी है, चौथा चिड़िया है, पांचवा कुत्ता है, ठीक है। सब चीज़ें उन्होंने कहा है। अब कुत्ते के लिए सिर्फ ये कहा है कि कुत्ता बुरा इसलिए है अगर आपको ऐसे लग जाए तो नापाक नहीं होगा, जिसम गीला होगा तो नापाक होगा, और बुरा इसलिए कहा गया है कि वो फरिश्तों को जब देखता है तो भौंकना शुरू कर, तो फरिश्ते इसलिए घर में नहीं आते, इसलिए घरों में रखना मना है। हाँ, खेतों पर पहरेदारी के लिए अगर कहीं रखना है, खेतों वगैरह पर, ज़मीनों पर जहाँ डाकू वगैरह का आने का डर हो, तो वहाँ पर उसे रख सकते हैं। क्योंकि पांच जानवर मुझे पहले बीच में याद आ गया, तो मैंने कहा बता दूँ। ये पूरी उनकी दुआएं भी बताई हैं कि किस तरह से दुआ देते हैं, और चींटियों के लिए तो खासतौर से बताया, पूरे इंसानी खानदानों की तरह रहती हैं, पूरे इनके अंदर कबीले होते हैं, जब मिलती हैं तो एक दूसरे को अलग अलग करती हैं, उसके बगैर जाती नहीं, आगे नहीं बढ़ती उसके साथ, ठीक है। इसलिए इनको कभी भी जानबूझ के पैरों से नहीं रोंगना। वैसे अगर पैर में खुद ब खुद आ गए तो आ जाए, वरना हर मुमकिन कोशिश करनी है कि चींटी पैर में ना आए। एक जगह मैंने पढ़ा था, कोई अब्दाल जो है, अब्दाल का मैंने पहले आपको बताया है, 40 मुत्तकियों में एक वली और 40 वलियों में एक अब्दाल। अब्दाल वो जिसने अपनी बुराइयों को नेकियों में बदल डाला, उसकी इखलास देख के अल्लाह ने तमाम बुराइयां उसकी ख़त्म करके सब नेकियों में आ गई। तुम्हारा कोई अब्दाल एक चींटी भी कभी जो है वो नहीं मारता, एक चींटी भी पैर से नहीं मारता। दूसरी बात, ये एक बात आपको बताऊं कि एक पीर व मुर्शिद ने जब बैठे हुए थे, ठीक है, तो हम तो बिल्कुल आजकल अंग्रेज हो गए ना, मेज़ों पे खा रहे हैं, उधर बिस्तरों पे खा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, नीचे खाते, ठीक। तो उनने कहा, एक उसने एक बंदे ने उनमें से कहा कि दस्तरखान उठाऊं। पहले लफ्ज़ इस्तेमाल होता था दस्तरखान बढ़ाएं, तो उन्हें क्या दस्तरखान बढ़ाने का तरीका आता है आपको? उनके बैठे होने से कहा, वैसे दस्तरखान पहले उठना चाहिए, बैठने वालों को बाद में, जो बैठने वालों को बाद में उठना चाहिए, क्योंकि इस तरह से रिस्क की बेहरमती है कि बंदा खाने के पैसे उठ जाए और दस्तरखान बिछा हुआ बाद में खुशी बनता है, इस तरह रिस्क उड़ता है। कोई ना कोई दो एक बंदे उस पर बैठे रहें दस्तरखान पर जब तक सारी चीज़ें उसकी नहीं उठाई, ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा दस्तरखान बढ़ाने का तरीका आता है? उन्होंने कहा हुजूर, दस्तरखान बढ़ाने का क्या तरीका होता है? उन्होंने कहा सुनो, जो छोटे छोटी सी चीज़ें हैं ना, इनको अलग करो, ठीक है, इनको अलग करो, जो ज़रा बड़े भोरे हैं इनको अलग करो, जो हड्डियाँ चबाई नहीं गई हैं उनको अलग करो, जो थोड़े से मोटे टुकड़े हैं उनको अलग करो, जो ज़रा ज़रा से दर्रे हैं उनको चींटियों के बिलों में डाल के आओ, जो उससे बड़े हैं उनको चिड़ियों के लिए छोड़ो, जो हड्डियाँ चबाई नहीं गई हैं वो उनको अपने जन्नात भाइयों के लिए छोड़ दो, क्योंकि जन्नात जो है, जब हड्डी हमारी उनके हाथ में जाती है, चबाई ना गई हो, सिर्फ गोश्त ऊपर से उतारा हो, तो जब वो हाथ में उठाते हैं तो पूरी गोश्त से वैसे ही भर जाती है जैसे हमने खाई थी भरी हुई, ठीक है ना, और बाकी जाके एक तरफ से खाओ। हमने कभी ख्याल किया है कि इतना कुछ करना है हमने? कभी नहीं, ठीक है ना। तो दस्तरखान बढ़ाने का कितना तरीका, और उन्होंने वही सारी चीज़ें बता दी जो यहाँ पर बताई हैं सलमान ने, कि किसके लिए क्या क्या है, ठीक है, चींटियों के लिए अलग डाल दो, चिड़ियों के लिए अलग डाल दो, जो और दूसरा ज़रा बड़े आएंगे वो कोई और बड़ा परिंदा खा लेगा, ठीक है, ये काले काले परिंदे हज़ारों फिरते हैं यहाँ पर, ठीक। और हड्डियाँ तो खानी उन्होंने, या वो खाएंगी, ऊपरी मखलूक खाएगी आके, और नहीं अगर खाएगी तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, खाएंगे ना वही खाएंगे, आप बाहर डाल दें वो आपको एक बिल्ली मिलेगी, बिल्ली खा गई कुत्ते खा गए सारे, ठीक है। हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो अब देखें, इनमें से जो मैंने जानवर बताए हैं, सलमान ने जो बताए वही खा रहे हैं ना, अब हम में से कितने लोग हैं जो इसका ख्याल करते हैं कि ये पांच जानवर जो हैं इनकी हमने दुआएं लेनी है? ना ना ना, ना 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 नहीं नहीं उसका वही है, चूंटियों का भगाने का तरीका वही है कि आप सूरह नमल की वही वाली आयत पढ़ें जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आता है ना उसके अंदर, वो वाली आयत आप पढ़ेंगे एक दफ़ा जोर से वहाँ चली आए। वो तो अच्छा है कि ठीक है अपना अपने खुराक के लिए चली गई, वो ठीक है ठीक है, वो ठीक है खुराक के लिए अपनी चली गई। लेकिन देखो बेटे जो चीज़ आपको तंग करे या काटे उसको मारने की इजाज़त है, लेकिन जो आपको तंग ना करे और काटे ना खामखा उसको मारने की इजाज़त है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी जानूँ कि ये जो इन्होंने जो बहुत सारे सवाल किए थे, इतने सारे सवाल मैं बता नहीं सकती, थोड़े से जानवरों का बताती हूँ कि मैंने पहले कबूतरों का बताया था ना कि कबूतर, वो मैंने खुद बताया था कि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह हु करते हैं। अच्छा बैल क्या कहता है जब बोलता है, जब बैल बोलता है हम तो उसकी बोली समझते ही नहीं, हमें तो लगता है ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, जब बैल बोलता है तो क्या कहता है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ऊँट क्या कहता है, ऊँट कहते हैं हस्बी अल्लाह कफा बिल्ला, हस्बी अल्लाह व कफा बिल्ला वकीला। मोर क्या कहता है, अर रहमान अलल अर्शिल अस्तवा, यानी पाक है वो ज़ात जो अर्श पर मुतमक्किन है। बुलबुल क्या कहता है, सुभान अल्लाही हीना तमसूना व हीना तुस्बिहून, क्या मतलब, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो जो पाक और बरतर है। तीतर क्या कहते हैं, तीतर कहते हैं अदले का बदला, अदले का बदला अदले, यानी जैसा करोगे वैसा बोलो। मेंढक क्या कहता है, देखो मेंढक, मेंढक कहते हैं अल्लाह की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, वो बख्शने वाला है। आगे उन्होंने कहा वो कौन सी कौम है जिस पर वही आई हालांकि वो ना इंसान है ना फरिश्ते, आपने वो शहद की मक्खियाँ हैं। बताओ जब रात आती है तो दिन कहाँ चला जाता है और जब दिन होता है तो रात कहाँ चली जाती है, आपने फरमाया जब दिन होता है तो रात अल्लाह के गामज़े इल्म में चली जाती है, जब रात होता है तो दिन अल्लाह के गामज़े इल्म, यानी जहाँ जो अल्लाह जानता है इल्म उसमें वो चली जाती है। तो हज़रत भाई अदीब बुस्तामी से 120 सवालात किए थे उन्होंने। अच्छा जब 120 सवालात हो गए ठीक है, फिर आपने उनसे कहा मैंने तुम्हारे सवालातों के जवाब दे दिए, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ तुम इसका जवाब दे दो, और वो ये है कि आसमानों की कुंजी और जन्नत की कुंजी कौन सी चीज़ है। वो पादरी खामोश खड़ा रहा, तमाम छोटे पादरी उस बड़े पादरी का मुंह देखने लगे। फिर उन लोगों ने पादरी को मुखातिब करके कहा इस शख्स ने आपके तमाम सवालातों के जवाब दे दिए हैं कि आपके पास इसके एक सवाल का जवाब नहीं। बड़े पादरी ने कहा इस शख्स के सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन मुझे ये डर है अगर मैं इसको सवाल का जवाब दे दूंगा तो तुम मेरी मुआफ़कत नहीं करोगे। तमाम लोगों ने कहा आप हमारे पेशवा हैं, हम ज़रूर आपकी मुआफ़कत करेंगे, यानी आपको मानेंगे, जो आप कहेंगे वो ठीक समझेंगे। इस पर बड़े पादरी ने कहा आसमानों और बहिश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, और जैसे ही उन्होंने ये सुना तमाम यहूदियों और ईसाइयों ने अपने वो जो नार सी बांधती हैं ख़ास निशानी होती है उनकी, उनको तोड़ दिया और सब ने कहा कि हम मुसलमान हो गए। गैब से आवाज़ आई ऐ भाई यदीद हमने तुम्हें एक जन्नार पहनाने का हुक्म इसलिए दिया था, यानी वो बांधने का हुक्म, ताकि हम तुमसे 500 जन्नार तोड़वाएँ। ठीक है, अब ये होता है फैज़, एक बंदे के फैज़ से 500 लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए। अब एक चीज़ और है कि फैज़ रसानी जो होती है वो असल कुर्बानी होती है। क्यों, कैसे असल कुर्बानी है फैज़, फैज़ रसानी असल कुर्बानी। सूफिया कराम एसार करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो अंदर बैठे रहते हैं ठीक है ना, वो क्या कुर्बानी देते हैं, سوچنے والی بات. دنیا میں صوفیہ کرام سے زیادہ بڑا احسار کرنے والا کوئی اور نہیں. وہ احسار کیا ہے؟ وہ جو فیض دیتے ہیں وہ ان کا احسار ہے. بندہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے یہ کیسا احسار ہے کہ احسار کرنے والے کے پاس کچھ بھی نہیں اور احسار ہو رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے, جس طرح فیض دینا ہو, جس طرف فیض دینا ہو اس طرف متوجہ ہونا ضروری ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں گے کہ کسی کو کچھ ملے, جیسے میں اگر چاہوں کہ آپ کو کچھ ملے, فیض آپ کو ہو, تو متوجہ ہونا میرا ضروری ہوگا نا آپ کی طرف. بغیر متوجہ ہوئے تو آپ کو فیض نہیں ملے گا. آپ بیٹھیں گی, سنیں گی, باتوں کو غور کریں گی, پھر آپ اس سے مطمئن ہوں گی تو سمجھو ایک قسم کا فیض آپ نے پایا, ٹھیک ہے نا. بات دراصل یہ ہے کہ جس طرف فیض دینا ہو اس طرف متوجہ دینا ضروری ہے, جبکہ ولایت تو توجہ اللہ کا نام ہے. جو اس کا مرتبہ ہے درویش کا, اس کو تو ہر وقت اللہ کی طرف توجہ دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے تو مخلوق پہ توجہ دینی ہی نہیں, اس نے صرف اپنی توجہ ہر وقت رکھنی ہے اللہ پر. ولایت یہ ہے. تو وہ اپنی توجہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اچھا, اب کیا ہوا؟ یعنی مخلوق سے بے نیاز ہو جانا, یعنی ولایت توجہ اللہ ہے, یعنی مخلوق سے بے نیاز ہو جانا, مخلوق سے توجہ ہٹانا اور متوجہ اللہ ہو جانا ولایت ہے. یعنی ولایت توجہ اللہ ہے. لہذا جب اللہ والے مخلوق کو فیض دینے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی توجہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر سے کچھ توجہ ہٹاتے, اوپر سے کچھ توجہ ہٹاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اپنا نقصان کرتے ہیں, ہے نا. وہ قیمتی وقت جو اس نے ادھر دینا ہوتا ہے وہاں سے ہٹاتے ہیں, ٹھیک, اور پھر مخلوق کو توجہ دیتے ہیں. جی, اوپر سے کوئی توجہ ہٹاتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں, یعنی احسار کرتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, یہ ہے ان کی قربانی, اور مخلوق کو عطا کرتے ہیں. جب اپنی توجہ اوپر سے ہٹاتے ہیں اور مخلوق کو دینے کے لیے ان کی طرف توجہ ہوتی متوجہ ہوتے ہیں تو اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی. تو ولایت توجہ اللہ ہے, توجہ اللہ ولایت, اور نبوت و رسالت توجہ الخلق, یعنی توجہ من الخالق الخلق, اللہ سے لے کے, یعنی بہت بڑا رتبہ ہے کہ اللہ سے توجہ لی اور خلق میں تقسیم کی. اللہ سے جو کچھ لیا اس کو خلقت میں تقسیم کر, رب سے وصول کر کے مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے متوجہ ہونا, رب سے وصول کر کے, یہ نبوت و رسالت ہے. گویا نبوت و رسالت اللہ سے وصول کر کے مخلوق کو دینے کا نام ہے. نبوت و رسالت کے اعلان سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 30-30 اور 40-40 راتیں بسر کرتے تھے, کھانا پینا بھول جاتے اور بے خودی کے عالم میں غار حرا میں دن گزارتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب بنا دی گئی تھی. صحیح بخاری جلد 1. یعنی غلبہ ولایت ہوا, غار حرا میں خلوت نشینی کرنے لگے, خلق کی ہدایت کے لیے نبوت ملی, نبوت جلوت جاتی ہے, نبوت جلوت جاتی ہے, ولایت خلوت جاتی ہے, ولایت خلوت جاتی ہے, نبوت اور رسالت جلوت, پتہ ہے نا, جلوت سب کے سامنے اور خلوت تنہائی. ولایت خلوت جاتی ہے, یعنی درویشی جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ خلوت میں رہتے ہیں. اگر وہ اپنا ٹائم کچھ لگاتے ہیں تو پھر وہ اپنی خلوت سے نکل کر آتے ہیں اور مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو وہ احسار کرتے ہیں اپنے وقت کا, جبکہ نبوت و رسالت ہوتی اس لیے ہے کہ اللہ سے وصول کرنا ہے اور لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، کہ اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خلق کی ہدایت کے لیے نبوت جلوت چاہتی ہے، ظہور چاہتی ہے، جبکہ ولایت مولا سے متعلق کے لیے، تعلق رکھنے کے لیے اخفاء اور خلوت چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احوال ولایت کا غلبہ ہو گیا تو پھر کھانا پینا بھی بھول گئے، پھر اسی حال میں حق ظاہر ہوا اور فریضہ رسالت فرض ہوا، یعنی کئی کئی کافی کافی عرصے تک غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے، سب کچھ بھول گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اوپر فریضہ رسالت آپ کے فرض ہوا، اور اس کے بعد آپ پر یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1, 2, اور 3 جو ہے یہ اتری۔ میرا خیال ہے زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔